ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरी हरी बोल, हरी हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त। हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण, ओम नमो शिवाय। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति अटेनिंग द सुप्रीम बींग है ना, ये चल रहा है। इसके लास्ट 2 श्लोक बचे हैं, है ना। तो मैं पिछले जो 15-16 श्लोक हमने किए हैं उसकी थोड़ा समरप कर देती हूँ कि क्या किया था हमने। तो 15 श्लोक में भगवान उन डिवोटीज की, उन भक्तों की जर्नी की बात कर रहे हैं जो डिवोशन में बहुत आगे बढ़ गए हैं। उन लोगों की बात कर रहे हैं जो भगवान से निरंतर जुड़े होते हैं, जो परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। उससे पिछले वाले श्लोक में 14 श्लोक में भगवान बता रहे थे कि उनको प्राप्त करना बहुत सुलभ है, आसान है। यानी कि जिसके पास अनन्य भाव है, के पास अनन्य भाव है, वो ही प्रभु को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। देखो फ्रेंड्स, भाव के बिना प्रभु की भक्ति डिफिकल्ट है ना। अपने बच्चे को भी हम कुछ काम करते हैं ना, अपने बच्चे का है ना, अपने बच्चों का कुछ काम कर रहे हैं, अपने घर का काम कर रहे हैं, तो एक अंदर फीलिंग होती है ना हमारे अंदर कि नहीं यार मेरे बच्चा है, मुझे ही करना पड़ेगा, है ना, कौन करेगा उसको, है ना। अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, अपने घर का ध्यान रखना है, तो एक अंदर फीलिंग होती है, एक भाव होता है कि मेरा घर है, मेरा बच्चा है, है ना। तो ऐसे ही भगवान के प्रति भी एक फीलिंग, भगवान के प्रति वो भाव जो कि हमारे पास सिर्फ हम क्या जाते हैं भगवान के पास अपनी लिस्ट लेके कि भगवान आप मुझे ये कर दो, मुझे ये दे दो, वो कर दो, और हम जीते हैं जीवन अपना मनगढ़ंत, बाकी कर्मों पर वहां हमारा कोई फोकस नहीं, और भगवान के पास हम इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेके जाते हैं, है ना। वो ही पूरा कल्चर हमने अब चेंज करना है, वो पूरा थॉट प्रोसेस हम लोगों ने चेंज करना है, वो बदलना। भाव के बिना प्रभु की भक्ति डिफिकल्ट है, तो हमें भाव होना ही होना चाहिए प्रभु के प्रति। अपने अंदर हमें उसको डेवलप करने की जरूरत है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब भगवान इस श्लोक में हमें बता रहे हैं, 15 श्लोक में मतलब, कि जो व्यक्ति उस अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, वो भाव अपने अंदर पैदा करता है, भगवान की भक्ति वो प्राप्त कर सकता है, वो व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि ये संसार दुखालय है, जेल है संसार। जो व्यक्ति इस संसार में रहता है उसके जीवन में दुख आते ही रहेंगे। हम सोचेंगे हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, सुख ही सुख आते रहेंगे, ये हम बिल्कुल सोचना बंद कर दें, या हम सोचेंगे नहीं नहीं ये तो लास्ट दुख है, है ना। इससे पहले जब तक हमने भगवद गीता नहीं पढ़ी हुई थी तो मैं भी यही सोचती थी कि नहीं नहीं ये जीवन में शायद इस दुख के बाद मैं खुश हो जाऊंगी, नहीं नहीं ये जीवन में मेरा खत्म हो जाएगा ना ये वाला फेज, तो मैं शायद खुश हो जाऊंगी। लेकिन अब मैं भगवद गीता पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ आ गया कि भाई ये सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहता। लेकिन ये नहीं हम सोचें कि सुख ही आएगा जीवन में, दुख नहीं आएगा, ये दोनों हम आने ही आने हैं, है ना। पहले तो इस बात में हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये सुख और दुख हमारे आने ही आने हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भी ये संसार दुखालय है, जेल है संसार। जो व्यक्ति संसार में रहता है उसके जीवन में दुख आते ही रहेंगे। 3 तरह के दुख उसके जीवन में आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। कभी उसको उसका अपना मन दुख दे रहा होता है, मन में हम मैनिपुलेशंस करते रहते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, है ना, गिल्ट में रहते हैं। फिर कभी हमारा शरीर हमें दुख दे रहा होता है, कभी दूसरा व्यक्ति दुख दे रहा होता है, और कभी हमें देवी देवताओं द्वारा हमें जो अपने पुराने कर्म जो हम करके आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें दुख मिलते हैं, है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें दुख ना मिले। ये मटेरियल वर्ल्ड जेल के समान है। तो भगवान कह रहे हैं जिसने अपने अंदर भाव डेवलप कर लिया, परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया, वो इस दुखालय अनित्य मतलब टेम्परेरी जगत में लौट कर नहीं आता। ये संसार अशाश्वत है और दुखों का घर है। अशाश्वत मतलब जो भी व्यक्ति इस संसार में आता है उसको इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है ना। जो भी आया है उसको जाना ही पड़ता है। इस श्लोक में हमें भगवान क्लियरिटी से हमें ये समझा रहे हैं कि अपना जीवन सुधार लो। अगर तुम प्रभु के साथ जुड़ जाओगे, अगर हम लोग प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे, भगवान के साथ भाव से भक्ति करेंगे, हम अपना जीवन सुधार लेंगे, तो ये जीवन तो सुधरेगा ही, है ना। ये जीवन तो सुधरेगा ही, साथ में इस शरीर को छोड़ने के बाद अगला जीवन भी सुधर जाएगा, है ना। फिर हम ऐसी जगह चले जाएंगे कि वापिस इस नश्वर संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें है जरूरत फोकस करने की जरूरत है, हमें जागने की जरूरत है, क्योंकि हम एक सोया हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। जैसे हम सपना लेते हैं रात को, तो हमें पता होता है ना, हमें नहीं पता होता कि हम सपना ले रहे होते हैं ना, तो हमें क्या लगता है वो सच है। तो ऐसे ही हम सोया हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये इस मटेरियल वर्ल्ड को हम सच समझ के बैठे हैं कि बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम कभी भी नहीं सोचते कि हमने इस जीवन को छोड़ के चले जाना है। तो हमें जागने की जरूरत है ताकि हम इस अनित्य जगत से बाहर निकल सके। इसका एक ही उपाय है, सत्संग साधना सेवा सदाचार के जीवन को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में अपनाना है। इससे हमारा आज का जीवन भी बड़ा आनंदमय हो जाएगा, और कल के जीवन में भी जीवन को छोड़ देंगे तो कल के जीवन में भी आनंद है, पीस है, है ना। तो कई बार प्रश्न उठता है कि भगवान के धाम जाकर हम क्या करेंगे, है ना। कई बार ये बहुत नॉर्मल से एक क्वेश्चन आता है कि यार भगवान के धाम जाकर क्या करेंगे हम, अभी तो हमें इस जीवन को सुधारना है, बड़ी बात है कि हमें ज्ञान नहीं होता, हमें भगवान के धाम की जानकारी नहीं होती, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। देखो फ्रेंड, भगवान का धाम ऐसी ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जहाँ हर वक्त आनंद ही आनंद है, ब्लिस है, पीस है, वहां दुख बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकता, वहां ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। जितना हम सोच सकते हैं ना कि हमारा लाइफ में कितनी ऑपुलेंस आ जाए, जितनी भी हम सोची है हमने लाइफ में कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, एक होता ना एक ड्रीम लाइफ हमने सोची होती है, मेरे पास ये वाली गाड़ी, मेरे पास ये वाला घर, मेरे पास ये चीजें, मेरे पास वो चीजें ना, मेरे को एक अच्छी बॉडी, ये सब जो भी चीजें हमने एक ड्रीम लाइफ सोची होती है ना, वो सब ऑपुलेंसेस हमें भगवान के धाम में मिलती है। वहां पर कोई भी मानसिक शारीरिक क्लेश नहीं है, वहां पर हम हमेशा 16 साल के रहते हैं, वहां अंधेरा कभी नहीं होता, कभी भूख प्यास नहीं सताती, वहां हर समय हम भगवान की संगति में रहते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी है भगवान के साथ जुड़ने की, परम सिद्धि को प्राप्त करने की, ताकि हम अपना ये सफर भी आनंद के साथ बिताएं और मृत्यु के बाद का जीवन भगवान के साथ, उनके सानिध्य में, उनके संगति में, उनके साथ जाकर, उनके धाम में, उनकी किलेलाओं में पार्टिसिपेट करके उनके धाम में बिताएं। फिर 16 वर्ष में भगवान हमें समझा रहे हैं कि सेम चीजें हम समझा रहे हैं 15 वर्ष वाले, कि जीवात्मा किसी भी लोक में चला जाए उसको दुख प्राप्त होना ही होना है। देखो हमारे ऊपर भी 7 लोक है जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं, और हमारे नीचे भी 7 लोक है जिसे पाताल लोक कहा जाता है। तो जीवात्मा मृत्यु के बाद किसी भी लोक में चली जाए, वहां उसको जरा, व्याधि, बुढ़ापा, बीमारी, इन 4 दुखों को फेस करना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो फिर वो भगवान के धाम जा सकता है, जहां ना ये जन्म होता है ना मृत्यु होती है, फाइनली वो मतलब इस जन्म मृत्यु की साइकिल से मुक्त हो जाता है ना। तो हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो ममता जी।
हरी हरी बोल। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, श्लोक नंबर 22। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। मैं रिपीट कर रही हूँ, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हरी हरि बोल जी।
हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, थैंक यू। तो फ्रेंड, इस श्लोक में हमें ये भगवान समझा रहे हैं कि भगवान ही ग्रेटेस्ट है, भगवान ही महान है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान सर्वोपरि है, सर्वे सर्व है ना। तो वर्ल्डली लाइफ में हम बहुत सारे लोगों को ग्रेट समझ कर उनको ग्लोरीफाई करते रह जाते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं समझ पाते कि उनको बनाया किसने, है ना, जैसे कि हम बताती रहती हूँ आपको कि हम जैसे आर्ट गैलरी में जाकर किसी पेंटर की पेंटिंग को कितना अप्रिशिएट करते हैं, है ना, वो 2 लाख की 20 लाख की पेंटिंग खरीद लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि उसने जो पैरट या बर्ड की जो सुंदर सी पिक्चर बनाई है या जो सुंदर सुंदर माउंटेन्स बनाए हैं, है ना, वो एक्चुअली किसने बनाए हुए हैं। हम एक्चुअली रियल पेंटर को जिन्होंने इस सारी सृष्टि बनाई है, इस सारे नेचर को, इन हवा में उड़ते बादलों को, जिनके अंदर पूरे शहर को डुबोने का पानी है और ये कैसे हवा में उड़ रहे हैं, इनको हम अप्रिशिएट नहीं करते। इस पूरी सृष्टि के वंडर्स को, ह्यूमन बर्थ के वंडर को, इतने सारे वंडर्स हैं, हम इनको कभी ग्लोरीफाई नहीं करते। और जब हम ये ग्लोरिफिकेशन करेंगे और सृष्टि को ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भगवान ही श्रेष्ठ है, भगवान ही महान है, भगवान ही सुप्रीम साइंटिस्ट है जिनको हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ह्यूमन बींग्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम किसी को भी अप्रिशिएट करें तो ये समझते हुए करें कि प्रभु देखो आपकी बनाई हुई कितनी बढ़िया सृष्टि है, है ना, आपने एक इंडिविजुअल को कितनी अच्छी बुद्धि दी है कि ये वो ये काम कर पाया, मतलब उसमें भी हम भगवान को याद करें कि प्रभु ये सब अगर उस व्यक्ति विशेष में कोई योग्यता है तो वो आपकी वजह से है कि आपने उसकी बुद्धि में आपने योग्यता दी है। तो हर एक चीज में हमें भगवान की ग्रेटनेस को अनुभव करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो ही सुप्रीम क्रिएटर है, है ना, वो ही हमारे सुप्रीम फादर है। तो श्लोक की पहली लाइन के सेकेंड हाफ में भगवान ये बता रहे हैं कि उस ग्रेटेस्ट सुप्रीम को कैसे पाया जा सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान श्लोक में हमें बता रहे हैं कि उन सुप्रीम साइंटिस्ट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। अनन्य वर्ड फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अनन्य मतलब जहां पर कोई अन्य ना हो, शुद्ध शुद्ध वर्ड, शुद्धता हो जहां पे सिर्फ। अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं ना तो हमारे अंदर सिर्फ एक ही थॉट आना चाहिए, जोश के साथ अविचलित भाव से हम उस रास्ते पर बढ़ते जाएं कि हमें क्या करना है, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। चाहे मटेरियल जीवन में देखो हमें कुछ भी प्राप्त करना है ना, मतलब मटेरियल जीवन में हम कुछ भी करना है, अगर हमें जीवन में चाहे हम खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, है ना, घूमने जा रहे हैं या किसी काम पे जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जो भी ड्यूटीज हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी उस भाव को बनाकर रखें कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। हर एक्टिविटी को, हर कर्म को ऐसे करें कि कैसे भगवान खुश हो जाए। इस तरह अगर हम भगवान के साथ जुड़कर उनसे रिलेशन बनाएं, अनन्य भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे प्रभु की, तो हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, मतलब चाहे हम नहा रहे हैं, तो फोकस क्या होना चाहिए, फोकस क्या होना चाहिए, चाहे हम शॉपिंग करने गए हैं, चाहे हम किसी फ्रेंड के साथ बैठे हैं, चाहे हम फोन पे बात कर रहे हैं, तो फोकस क्या होना चाहिए, फोकस ये होना चाहिए कि भाई मेरे को प्रभु को वो फोकस लूज नहीं करना है अपना, है ना, ये नहीं कि बस सत्संग सुन लिया, भगवान की भक्ति वो जो आधे घंटे की सुबह और आधे घंटे की रात को कर ली, बस हो गया भगवान खुश हो गए। यहाँ पे भाई अनन्य भक्ति की बात हो रही है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्रभु खुश होंगे और अनन्य भक्ति के द्वारा ही हम प्रभु को पा सकते हैं, है ना। तो फोकस क्या कि भाई मेरे को प्रभु को प्राप्त करना है और जो भी मैं ड्यूटीज कर रही हूँ मुझे इस भाव से करनी है कि प्रभु मेरे हर कर्म से, मेरे हर डीड से प्रभु खुश हो। तो ऑटोमेटिकली आपको कोई दोबारा कोई नया टाइम नहीं बनाना पड़ेगा प्रभु की भक्ति के लिए। वो सारा जो आप जीवन जियोगे ना, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी आप जीवन जियोगे ना, वो ऑटोमेटिकली भगवान की भक्ति हो गया। और भगवान को ये ही कार्य पसंद आते हैं जो हम प्रभु से जुड़ कर करते हैं, इस सेवा भाव से करते हैं कि किसी को दुख ना हो और प्रभु मेरे हर काम से खुश हो। तो ये तो बात होगी प्रभु के रास्ते की, है ना, ये तो प्रभु के धाम जाने की बात हो रही है। प्रभु के रास्ते में, प्रभु जो जिस रास्ते पे चलकर हमसे खुश होंगे, ये उस रास्ते की बात हो रही है ना। अगर हम मटेरियल वर्ल्ड की भी बात करें ना, अगर किसी बच्चे ने IIT का एग्जाम या सिंपल इंजीनियरिंग करनी है उसने, तब भी उसको फुल फोकस से चलना पड़ेगा। 10th भी क्लियर करनी है ना, तब भी उसको फोकस करना पड़ता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में भी हमें कुछ प्राप्त करना हो ना, तो हमें पूरा फोकस करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। है ना, तो फिर भगवान के रास्ते में हम कैसे सोच सकते हैं कि हम बिना फुल फोकस के ही पहुंच जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अनन्य भक्ति समझनी पड़ेगी। अनन्य भक्ति जो मैंने बताई है कैसे करनी है, शुद्ध भक्ति कैसे करनी है ना। देखो भगवान हमें कहीं नहीं बोल रहे कहीं भी जाने के लिए, भगवान हमें क्या करें अभी, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की ड्यूटीज को भगवान की खुशी के लिए करो। जैसे देखो हम समझे, जैसे हम बोले कि यार हम कैसे कर सकते हैं, जैसे नए नए जो डिवोटीज होते हैं जो वो क्या बोलेंगे, यार मैं ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, जो मैंने तो सुबह पूजा कर ली या शाम को कर ली, इसको तो ठीक है मैं समझ रही हूँ भक्ति है, लेकिन पूरा दिन मैं कैसे भगवान को याद कर सकती हूँ, है ना। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जैसे अर्जुन युद्ध में खड़ा है ना, लड़ाई चल रही है वहां, तो उसको भगवान ने ये कहा कि तुम जंगल में चले जाओ या घर चले जाओ और जाओ वहां पे मेरी चैंटिंग करो या फिर तुम वहां पे भक्ति करो, है ना। उनको भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम अपने घर चले जाओ या जंगलों में चले जाओ, ये सब छोड़ दो। तो भाई भगवान हमें इंसिडेंट्स के थ्रू हमें समझाते हैं, है ना, कि अपनी लाइफ की ड्यूटीज करते हुए हमारे जीवन का कुरुक्षेत्र देखो हमारी गृहस्थी है, हम लेडीज की, हम जो घर में काम करती हैं, हमारा कुरुक्षेत्र हमारी गृहस्थी है, तो हमें वो लाइफ की ड्यूटीज को इस तरह से करना है कि भी प्रभु खुश हो जाए। फिर उससे अटैचमेंट नहीं रखनी है कि प्रभु मेरे बाकी लोग मेरे से खुश हो जाए, अपना बेस्ट करना है ना। अपने आप को पता होता है कि मैंने क्या मैं क्या किया, ऐसे कर्म करने हैं कि प्रभु खुश हो, अपना बेस्ट करना है, फिर अटैचमेंट छोड़ देनी है कि कोई मेरे से इस काम से खुश हो या ना हो, है ना। और फिर अपने डिस्ट्रक्टिव टाइम में अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज करनी है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि जैसे अर्जुन युद्ध में खड़ा है, लड़ाई चल रही है ना, उसको भगवान नहीं कह रहे कि भक्ति के लिए तुम कहीं और चले जाओ, भगवान उसको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो समाज कल्याण के लिए, भगवान की खुशी के लिए, अपने अहंकार का त्याग करते हुए, अपने कंफर्ट के बारे में बिना सोचे हुए, बस ड्यूटी समझकर अपनी जिंदगी को यानी कि अपने कुरुक्षेत्र को चलाए। तो वैसे ही फ्रेंड्स हम सबको शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, अनन्य भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की ड्यूटीज को मोरलिटी के साथ करना चाहिए। किसी भी चीज से हमें अटैच नहीं होना है, अटैच होना है भगवान की सेवा के भाव से, समाज कल्याण के कार्यों के साथ अटैच होना है, जिससे भगवान खुश होंगे। और इसकी सेकंड लाइन में भगवान समझा रहे हैं कि पर्सनली तो भगवान अपने धाम में रहते हैं, वैकुंठ धाम या गोलोक धाम जिसको कहते हैं, है ना, वहां श्री कृष्णा पर्सनली श्याम सुंदर रूप में हाथ में मुरली पकड़े हुए वहां पे विराजमान रहते हैं और अपने शुद्ध भक्तों के साथ भक्ति का जीवन इंजॉय करते हैं, जहां हम सबको पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वहां रहते हुए भी प्रभु सर्वव्यापी है, कण कण में है, तो वो परमात्मा है, है ना। तो हम ये सोच नहीं पाते अपनी छोटी सी बुद्धि से कि अगर मैं यहाँ पे हूं तो मैं वहां पे नहीं हूं, लेकिन भगवान तो हम सबसे ऊपर है ना, भगवान हर जगह एक ही समय में हो सकते हैं क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। भगवान पर्सनल फॉर्म में अपने धाम में रहते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ ये कहते हैं कि प्रभु सब जगह है, तो वो परमात्मा के रूप में, एक एनर्जी के रूप में, हम एक, जैसे हम एक सोल है, आत्मा है, प्रभु परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है, प्रभु हम सबके अंदर है, कण कण में, तो भगवान यहाँ भी है और भगवान अपने धाम में भी रहते हैं पर्सनली। अगर हम अपने अंदर से परमात्मा की आवाज सुनने की कोशिश करें और अपने जीवन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लाएं सिंसेरिटी से, तो यहां से हम प्रभु के पास, भगवान श्री कृष्णा के पास पर्सनल फॉर्म में परमानेंट लाइफ का रस एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो, लास्ट वर्स।
हरी हरी बोल। श्लोक नंबर 28। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वे वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने में प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। मैं श्लोक को रिपीट कर रही हूँ। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड, जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा ना कि अनन्य भक्ति से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, फुल फोकस से, जैसे अर्जुन को सिर्फ पक्षी की आंख दिखती है, वैसे ही हमें भी ये ध्यान रखना है कि मैं अपने कर्म इस तरह से करूं कि प्रभु प्रसन्न हो, है ना। हमें फुल फोकस कहाँ करना है, अपने हमारी जो एवरीडे लाइफ की जो ड्यूटीज है ना, हमें उन कर्मों पे फोकस करना है, अपने थॉट प्रोसेस में फोकस करना है कि मैं क्या सोचती रहती हूँ पूरा दिन। काम जब मैं करती हूँ मैं क्या सोचती रहती हूँ, किस बारे में चिंता करती हूँ, किसके बारे में सोचती हूँ, उस वक्त जो हम सोचते हैं ना उस वक्त क्या बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल, जो फालतू कुछ नहीं सोचना है। जब फालतू कुछ भी सोच आए तो आपने क्या करना, कोई भी जो भी चैंटिंग आपको अच्छी लगती है, जो भी प्रभु का नाम राम राम अच्छा लगता है, ओम नमो शिवाय अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है आपने वो बोलना, और साथ साथ में अपने ड्यूटीज करते जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में भक्तों को, जिनके अंदर भक्ति के रास्ते में जाने की चाह है ना, उनको ये बात एश्योर कर रहे हैं कि भी तुम ऐसा मत समझ लेना कि अगर तुम डिवोशन के रास्ते पर चल पड़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ कमी आ जाएगी या तुम्हें मटेरियली तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना यार अभी तो मुझे बहुत कुछ प्राप्त करना है, अभी मैं कहाँ भक्ति कर सकती हूँ, अभी तो मुझे बहुत सारे काम है, है ना। तो भगवान यहाँ पे हमें एश्योर कर रहे हैं कि भाई तुम ये मत सोचना कि तुम भक्ति के रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें मैं कुछ कमी दे दूंगा। भगवान ने बताया कि कोई अगर चैरिटी कर रहा है, वेदाध्यन कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रहा है, कोई फलों की इच्छा से कर्म कर रहा है, उसको जो भी फायदा होगा ना, जो एक इंडिविजुअल डिवोशन में चल रहा है ना, तो उसको भी ये सब मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ में जब अंतिम समय में जो डिवोटी है, जिसमें भक्ति भाव है भगवान के लिए, जिसने शरण ग्रहण कर ली है परमात्मा की, जिसने भगवान के लिए प्रेम पैदा कर लिया है, तो वो तो भगवान के धाम चला जाएगा। बाकी किसी भी रास्ते में जो मुक्ति की बात है, भगवान के साथ पर्सनल एसोसिएशन की बात है, भगवान के धाम जाने वाली बात है, वो किसी और जीवात्मा को नहीं मिलती। वो सिर्फ एक ही रास्ते में मिलती है, जब कोई भगवान की भक्ति भाव से जीवन जिए। तो फ्रेंड्स हमें ये समझना चाहिए कि बाकी जो रास्ते जो यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तपस्या, वेद पढ़ना, चैरिटी, सकाम कर्म, एक्चुअली ये सारी अच्छी बातें हैं। लेकिन यहाँ डिस्टिंक्शंस क्या हो रही है, कि क्या डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, कि अब कोई ये कर रहा है ना, ये सब सारी चीजें वो कर रहा है, वेदाध्यन पढ़ रहा है, बहुत ज्ञान ले रहा है, चैरिटी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर अगर मैं है, यानी वो अहंकार के साथ अगर वो कर रहा है, उसके अंदर सूक्ष्म लेवल का अगर उसमें अहंकार है। देखिए जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति कोई दान दे रहा है लेकिन उसके अंदर सूक्ष्म लेवल का अहंकार है कि मैंने किया, है ना। अगर कोई दान दे रहा है कोई भक्ति भाव से, फिर वो भक्ति बन गया, है ना। मतलब एक इंटेंशन का फर्क आ गया, एक हो रहा है एक अच्छा, तो देखो काम तो वो भी अच्छा कर रहा है जिसमें अहंकार है, लेकिन उसमें एक मैं का भाव आ गया। लेकिन जो भक्ति भाव से जो चैरिटी कर रहा है उसमें क्या भाव आ जाता है, कि भाई वो है ना आरती में लाइन, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, कि ये प्रभु का तो दिया हुआ है सब कुछ, अगर मैं उसमें से छोटा सा पार्ट मैं किसी को कुछ दे रही हूँ दे रहा हूँ तो भाई मेरा तो कुछ भी नहीं है, प्रभु ने मुझे दिया है और मैं इतना, भगवान ने मुझे कैपेबल किया है कि मैं एक व्यक्ति की हेल्प कर रहा हूँ तो कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ, है ना। तो ये हो गया भक्ति भाव से कर्म करना। तो जब भी हम कोई अच्छा कर्म करते हैं ना, तो हमें ध्यान रखना है निमित्त मात्र का भाव लाना है, कि ये हे प्रभु ये जो दान है ये मैंने नहीं किया है, ये तो जो आप मुझे देते हो ना, ये तो सब कुछ आपका दिया हुआ है, ये तो मेरा कुछ है ही नहीं, जो आपने दिया ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सब लोगों के साथ शेयर करूं। अगर हम इस भाव से चलेंगे ना, तो चैरिटी या जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं ना, तो वो सारे कर्म फिर भक्ति बन जाएंगे। इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो अच्छे कर्म तो कर रहे हैं लेकिन साथ में सूक्ष्म लेवल का उनमें अहंकार है, और वो उनको जो यश मिलता है उससे वो अटैच हो जाते हैं, और अगर वो चैरिटी भी करते हैं तो उनमें ये भावना आ जाती है कि देखो हम कितने अच्छे हैं और बाकी लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना। तो वो भक्ति नहीं है। अपनी सारी ड्यूटीज अगर हम डिवोशनली परफॉर्म करें, फलों की इच्छा का त्याग करके करें, मैं की भावना का त्याग करके करें, तो वही सारी चैरिटी जो अच्छे कर्म है वो हमारी सब कर्म हमारी भक्ति बन जाएंगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहीम जी ना एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, और एक बहुत बड़े दानी भी थे वो, लेकिन जब वो दान देते थे तो अपनी आंखें झुका लेते थे, तो बाकी लोग बड़े आश्चर्य में थे कि इतने अच्छे काम कर रहे हैं ये रहीम जी, फिर भी आंखें झुका लेते हैं। तो ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी तक पहुंची, है ना। वैसे तो उनको पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो लोग उनके पास आए थे ये बात करने के लिए कि उन्होंने बताया कि ऐसे करते हैं रहीम जी, तो उनको तो पता था, लेकिन उन्होंने उन लोगों को आंसर देने के लिए एक चिट्ठी लिखी रहीम जी को कि आप इतने अच्छे कर्म करते हो लेकिन आप अपनी आंखें क्यों झुका लेते हैं। तो रहीम जी ने आंसर किया, देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भ्रम हम पे धरे याते नीचे नैन। उन्होंने कहा कि देने वाले तो प्रभु हैं, मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ देने वाला, इसलिए लोग ये ना समझे कि मैं दे रहा हूँ, उनको ये ना लगे, इसलिए मैं आंखें झुका कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यही चीजें हमें भी करनी है, जब हम मैं का त्याग करके समाज में ह्यूमैनिटेरियन वर्क करेंगे, किसी की हेल्प भी करेंगे, वो सारा काम भक्ति बन जाएगा। लेकिन अगर हम कोई अच्छाई का काम कर रहे हैं लेकिन मैं के साथ कर रहे हैं तो फिर वो भक्ति नहीं है, वो पुण्य जरूर है, है ना, उसका पुण्य का खाता जरूर ओपन हो जाएगा, लेकिन वो भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। इस श्लोक में भगवान यही हमें अश्योर कर रहे हैं कि हमें भगवान कोई कमी नहीं होने देंगे। तो हम भगवान की तरफ अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारे तरफ 10 कदम आते हैं। तो फ्रेंड्स ये खाली एक फिलॉसफी नहीं है कि ठीक है बातें लिखी हुई हैं वो हमने पढ़ ली, है ना। भगवद गीता का एक एक श्लोक, अगर हम एक श्लोक भी जीवन में उतार लेना तो वो भगवान डायरेक्ट भगवान की वाणी है, और वो डायरेक्ट वाणी हम पे हमसे बात कर रही होती है, है ना। पर्सनल एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम इसको, हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाने की देर होती है जो हम बढ़ाते नहीं। और भगवान कह रहे हैं जो फाइनल मुक्ति है, भगवान के धाम जाना है, वो खाली सिर्फ डिवोशन करने से ही मिलती है। तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर में फ्रेंड्स, हमें लक्ष्य बनाना है प्रभु की प्रेमा भक्ति का, प्रभु के साथ भाव लगाने हैं। तो ईश्वर के रास्ते में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो साइड बाय साइड जो डे टू डे लाइफ की जो चीजें है ना, जैसे सबसे ज्यादा पहाड़ लगता है कि हमारा मन शांत हो जाए, हम कैसे खुश रहें हर वक्त, हम फेलियर्स को कैसे डील करें, है ना। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भी डिजायर होते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे छुटकारा पाएं, ये सब चीजें हमें सोचनी नहीं है। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, भगवत प्राप्ति, तो हमें सोचना है कि भगवान के प्रेम को कैसे हम प्राप्त करें, कैसे भगवान मेरे कर्मों से खुश हो जाएं और भगवान मैं एक तरफ कदम बढ़ाऊं और प्रभु मेरे तरफ 10 कदम आए। जब हम शुद्ध भक्ति पर फोकस करते हैं ना, अनन्य भक्ति पर फोकस करते हैं, बाकी छोटी छोटी चीजें जो हम सोचते रहते हैं ना, ऐसे क्या जनरली हम खाना बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, किसी से बात भी कर रहे होते हैं ना, तब भी फुल स्पीड से हमारा माइंड ना चल रहा होता है, क्या सोच रहे होते हैं हम, कोई भी वो 4-5 थॉट होते हैं, मेरे बच्चे को क्या होगा, मेरे हस्बैंड के साथ मान लो कुछ सुबह कुछ लड़ाई होगी मान लो, तो मैं वो सोच रही होंगी कि चलो मेरे हस्बैंड के साथ ये हो गया वो हो गया, है ना, वाइफ हस्बैंड है तो वाइफ के बारे में सोच रहा होगा, या फिर मेरे बच्चों को क्या होगा, अपने फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, मैंने घर लेना है तो वो मैं कैसे पैसे अरेंज करूं, है ना, मैंने गाड़ी लेनी है वो कैसे करूं, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे बोल दिया, वही 5-6 थॉट होते हैं जो हम सोचते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, उसको सोचने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़नी, सारी सॉल्यूशन जो है ना एक ही रास्ते से निकल आते हैं, जो हम सब अनुभव भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। ईश्वर की प्रेमा भक्ति पर फोकस कीजिए सिर्फ, बाकी सब कुछ जैसे ठीक होना है ना वैसे ठीक हो जाएगा, है ना। और जो चीजें जो सांसारिक चीजें जो ठीक नहीं होनी है, उनमें कैसे हमें डील करना है, अपने फेलियर्स को कैसे हमें डील करना है, है ना, उनमें स्टेबल रहने की प्रभु हम पे कृपा जरूर करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स अब रिव्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, और आपका कोई डिवाइन एक्सपीरियंस है, आप कुछ बात शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो। हरी हरी बोल।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मोना जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब तक पहले जब हम भगवत गीता नहीं पढ़ रहे थे तब से और अब की जो हमारी जितना भी टाइम हमें पढ़ते हुआ है, हमें जमीन आसमान का पता चला है, मतलब बातों का, कि भगवान ही पहले हम भगवान ही है जो हम हमें बताते हैं हर बात का, ये अच्छा है बुरा, पर हम ही, हमारी सीमित बुद्धि है, हम ही नहीं समझ पाते। हम अपने पहले छोटी छोटी बातों के लिए भगवान जी को ब्लेम करते थे कि कुछ थोड़ा सा कोई दुख आ गया या हमारी कोई वही सेंसेस कंट्रोल नहीं होती थी, तो कोई इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो जाना है भगवान जी हमारी आपने ये इच्छा पूरी नहीं की, तो जो अब हमने गलतियां की है उन गलतियों के लिए हम भगवान जी से माफी मांगते हैं कि भगवान जी हमें जो गलतियां हो गई हैं उनको हम उसके लिए हमें माफ करें। और भगवान जी हमें ये बता रहे हैं कि भगवान ही श्रेष्ठ हैं, वही सर्वोपरि हैं, सब कारणों के कारण है। आज जो हम ये अपनी जीवन जी रहे हैं, इस जीवन में आए हैं, तो उनकी ही वजह से आए हैं, क्योंकि वही उनकी इच्छा के बिना कहते हैं ना कि एक पत्ता भी नहीं हिलता, उन्होंने ही हर जगह हर बंदे को लाया है, उनकी वजह से हमारा जीवन है। तो जब से हम भगवत गीता आपसे ही सीख रहे हैं तो पता चला है कि भगवान को कैसे हमने, भगवान जी को कैसे हमने उनकी बातों को सुनना है और अपने जीवन में ग्रहण करना है, अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को ऐसे करना है कि भगवान खुश हो जाए। मतलब खुश मीन्स कि ये नहीं करना कि कोई गलत काम करे तब भी भगवान खुश हो जाए। जो हमें ड्यूटीज मिली हैं अपनी फैमिली की, उसको ऐसे करना है कि उससे हम अटैचमेंट नहीं बनानी है कि भगवान ने हमें जो ड्यूटी दी है हम ईमानदारी से करें, और अपनी सारी ड्यूटीज को करें कि भगवान आप हमें शक्ति दे, वही शक्ति दे रहे हैं तभी हम ये कर पा रहे हैं, सुबह से लेके उठ के रात तक जो भी हम ड्यूटीज करते हैं तो उनकी वजह से ही कर पा रहे हैं। मटेरियल वर्ड्स में भी अब इसमें बताया कि भगवत प्राप्ति, आपने बताया कि ये चैप्टर का नाम था भगवत प्राप्ति, तो हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वही बताया कि हम अपनी डे टू डे लाइफ को प्रभु को ही अर्पण करते हुए करना है। जो हम जब तक हम मटेरियल वर्ल्ड में भी हम जो कोई काम करते हैं, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए मेहनत करते करनी पड़ती है, तभी हम एक क्लास से दूसरी क्लास तक पहुंचते हैं। तो अब जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की इसमें आए हैं दुनिया में, तो भगवान जी हमें ये बता रहे हैं कि जब हम उनकी तरफ बढ़ने के लिए हम मेहनत करेंगे तभी हमें वो सक्सेस मिलेगी, तो हम वो सक्सेस फील भी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम हर चलते फिरते भगवान जी का नाम लेते हैं तो हमें जो वो बल मिलता है तो वो पता ही नहीं चलता कि वो पावर कहाँ से आ रही है। तो सच में ये भगवान जी हैं जो हमें दे सब कुछ शक्ति देते हैं, तो हमें भगवान जी का थैंक यू करते रहना है, जो भी कुछ मिला है हमें उसी में सेटिस्फाइड रहना है, जो अगर कुछ नहीं मिला है तब भी हमें थैंक यू बोलना है और उनका करना है कि भगवान जी हमें आज हमारा उस बात के लिए समय नहीं आया है। जब से हम भगवत गीता पढ़ते हुए हमें ये गोलोक एक्सप्रेस के द्वारा हमने सीखा कि भोग लगाना है, भगवान जी की जो अपनी सेवा करनी है, जो भी हम सेवा कर सकते हैं जितनी हम, तो भगवान जी हमारी बुद्धि में जब हम उनको बिठाते हैं तो हमें अच्छे बुरे का एहसास भी दिलाते हैं कि ये हमारे लिए क्या अच्छा है, कहाँ हमने अच्छा बोलना है, तो वो बुद्धि भी कहाँ से आती है, वो भगवान जी की हमें दे रहे हैं। बस हमें ही समझना है कि भगवान जी हमारे साथ है, हमें अहंकार नहीं करना है और हर हमें अपने थॉट प्रोसेस के बारे में भी सोचना है, जो भी हमें गंदे थॉट्स नहीं लाने हैं। जब भी हमारे दिमाग में कोई गंदे थॉट्स आए तो हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र जाप करते रहना है। और जब हम अपने माइंड को इस मंत्र में या भगवान जी का ही ध्यान में बिजी रखेंगे अपने माइंड को, तो सच में हमें पता चलता है कि भगवान जी हमें अच्छे काम करा रहे हैं। भगवान हमें बता रहे हैं कि मैं डिवोशन करके जो भी कर्म करना है उसका साथ में कभी नहीं छोड़ता हूँ। और भगवान जी सच में ये तो हमने भी अब भगवत गीता पढ़ते हुए एक्सपीरियंस किया है कि भगवान ही है, हमें अच्छे बुरे का एहसास दिलाते हैं, तो हमें ही अपने कर्मों के ऊपर फोकस करना है और हमें भगवान को सब कर्म अर्पण करने हैं। हरी हरी बोल नाना जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ममता जी, ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग बन रही है आपकी, थैंक यू। हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है?
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक्स मोना दी, मजा आया, बहुत आनंद आता है सत्संग सुन के। मतलब कि कंप्लीट डे जिसको बोलते हैं, कंप्लीट डे। और थैंक यू आपने हमें ये जो करवाए हैं दो श्लोक, इस चैप्टर के लास्ट दो श्लोक बहुत अच्छे से समझ आए। और आपके सत्संग से मेरी जो लर्निंग बनी है वो ये है कि हमें अपनी लाइफ में सेवा, सत्संग साधना को इम्पोर्टेंस देनी है और इनको बढ़ाना है। हमारा परम लक्ष्य प्रभु के परम धाम जाना होना चाहिए। हमें हमारी लाइफ में अच्छे कर्म करने हैं और अपनी डेली लाइफ की ड्यूटीज इतनी अच्छी तरह करें कि जिससे हम इस जन्म मृत्यु के सर्कल से निकल सकें और प्रभु को खुश कर सकें। हम प्रभु की शुद्ध भक्ति करके ही प्रभु को पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ही हमारे परम पिता हैं। प्रभु ही हर चीज के, हर बात के स्टार्ट और एंड पॉइंट है, मतलब सुप्रीम पावर है। प्रभु भले ही अपने परम धाम में रहते हैं, परंतु अपने परम धाम में रहते हुए भी वो कण कण में विराजमान है। वो सब जगह है, सब में है और सब उनमें है। अगर हम प्रभु की शुद्ध भक्ति भी कर लेना, तब भी हमें तपस्या, दान, धार्मिक यात्राएं करने जैसे फल और पुण्य प्राप्त होगा। हमारा फुल फोकस प्रभु की शुद्ध भक्ति पर होना चाहिए। हमें डेली लाइफ की ड्यूटीज करते करते शुद्ध मन से प्रभु की चैंटिंग करते रहना चाहिए। हमें हमारे जीवन का परम लक्ष्य केवल और केवल प्रभु की शुद्ध भक्ति को बनाना होगा। अगर हम इतना भी शुद्ध मन से कर लेंगे तो भी हमें परम सुख प्राप्त होगा और हम प्रभु की परम धाम की ओर बढ़ पाएंगे। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग पूजा जी, थैंक यू। ठीक है, फिर हम भजन की तरफ बढ़ते हैं। मीनाक्षी जी आप गालो भजन। हरी बोल जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का भजन, आज का सत्संग बहुत बहुत ही अच्छा था। और एक गली सच में बताओ तो 2 वीक से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ एक फुल स्टॉप लग गया लाइफ में। पहली ऐसी फीलिंग नहीं थी क्योंकि सत्संग नहीं ज्वाइन, मतलब कि ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन जब से ये ग्रुप ज्वाइन किया है एक दिन भी सत्संग नहीं होता है तो मन में एक, ठीक है, आप सबको कहीं भी कभी कोई काम पड़ जाता है तो उसकी वजह से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक अंदर एक फील आता है आज सत्संग नहीं हुआ तो एक वो आता है कि ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है डेली रूटीन से, या फिर वो एक भाव जो था वो मिस था। आज सच में कह रही हूँ, ये तो मीनू दीदी ने मुझे फोन करके बताया कि तुम व्हाट्सएप चेक नहीं कर रही हो, तुम्हें मैसेज आया। मैंने कहा अच्छा, तो बहुत एक अजीब सी खुशी, एनर्जी पार, जैसे मीनू दीदी ने भी कहा कि एक पार जो हमें मिलती है वो एक फील, एक रूटीन बन गया है, जिसके भगवान ने हमें, हम नहीं भगवान ने, मुझे लगता है भगवान ने हमें अपने साथ अपने माला में वो पिरो दिया है। तो वो एक दिन भी अगर ना हो तो कुछ अजीब सा फील आता है। तो आज का सत्संग बहुत बहुत डिवाइन था और इसमें यही मैंने आज की मेरे सत्संग से ये लर्निंग बनी है कि जो भगवान है हमारे प्रभु, वो तो सबसे महान है और उनको पाने के लिए हमें डेली रूटीन की, ये जो हम मंदिर में 1 घंटा चले गए या सुबह उठ के नहाए धोए पूजा किया फटाफट से, उससे भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाना है तो हमें हर काम, हर सांस में, जिससे कहते हैं सांसों की मालाओं में सिमरू मैं प्रभु का नाम, तो उस प्रकार हमें हर कार्य में, हर जो भी हम अपनी एक्टिविटी करते हैं, हमें उसमें प्रभु को, वो कार्य प्रभु को भी समर्पित करना है और हमें प्रभु को याद करते करते वो कार्य करना है। उसको कहेंगे हम अनन्य भक्ति। तो उस तरीके से हम प्रभु को पा सकते हैं। अब प्रभु को पाना है, जैसे हमने कहीं अपनी कहीं डेस्टिनी सोचते हैं ना, कहीं जाना है हमें, तो फॉर एग्जांपल दिल्ली तक जाना है तो हमें दिल्ली पहुंचना है। अब प्रभु को पाने के लिए हमें कौन सी जगह जाना है? प्रभु का तो एक ही धाम है जहां अपने वो धाम में विराजमान है, लेकिन उनको पाने के लिए कौन से धाम में जाना है? हमें किसी पर्वतों पर जाना है, जंगलों में ढूंढना है? इस श्लोक में बताया जाता है कि प्रभु तो हर जगह है, तो हम अपन उसको कैसे पाएंगे? जब हम अपने हर काम में, हर ड्यूटी में प्रभु को इन्वॉल्व करेंगे, प्रभु को सरेंडर करेंगे हर कार्य को, तो उस तरीके से हम जो है अनन्य भक्ति करके हम प्रभु को पा सकते हैं। दूसरे श्लोक में मैंने ये सीखा कि भक्ति, अब ये जो हमारी इस मार्ग पे चलते चलते हमें ये नहीं सोचना है कि हमें दान करेंगे तो हमें उससे ज्यादा मिलेगा, हम अगर अपने हर कार्य में भक्ति को इन्वॉल्व करेंगे, प्रभु को इन्वॉल्व करेंगे, प्रभु का सिमरन करते करते अगर हम कार्य करेंगे, तो भी हमें जो है भक्ति, जो भगवान है उसका फल नहीं पर अपना अपने जो मुक्ति मिलेगी, हमें हमें मुक्ति जो है प्राप्त होगी। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें बड़े वेद, कभी कभी कहते हैं ना कि सिर्फ एजुकेशन जो है और लिटरेट होना और एजुकेटेड होना, दोनों में डिफरेंस है। लिटरेट मतलब कि आपने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, एजुकेटेड पर्सन जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होती है पर्सन की। तो उसी तरीके से कि अगर मैं बड़ी वेद पढ़ लूं, किताबें पढ़ लूं, तपस्या कर लूं, लेकिन मेरे मन के भाव में अगर प्रभु नहीं है तो उसका कोई, उस भक्ति का कोई मतलब नहीं है। वो भक्ति, उस भक्ति से प्रभु नहीं मिलेंगे। भक्ति, वो भक्ति जो अनन्य है, जो बिना किसी फल की इच्छा से मैंने की है, तो वैसी भक्ति मुझे अपने 24/7 कहते हैं ना, उसमें अगर मैं इन्वॉल्व करूंगी वैसी भक्ति, तो ही प्रभु की जो है प्रभु प्राप्ति होगी, प्रभु के धाम हम पहुंचेंगे। तो अब मैं आज का भजन जो है उसकी तरफ प्रस्तुत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद भी आएगा।
राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही समझ जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे सजीवन की बस एक तमन्ना है, राधे सजीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की राधे, तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।